आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैष्णवी। श्रोताओं, 29 अगस्त का दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर खेलों के प्रति उनके योगदान को याद करने का अवसर है। मेजर ध्यानचंद ने उस दौर में भारतीय हॉकी को दुनिया के शीर्ष पर पहुंचाया जब भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि मेजर ध्यानचंद की हॉकी यात्रा कैसी रही, किस तरह उन्होंने भारतीय हॉकी को दुनिया में पहचान दिलाई और उनकी विरासत आज भारत में खेलों को बढ़ावा देने की कोशिशों से किस तरह जुड़ती है। इसके साथ ही जानेंगे कि खेलों को केवल पदक जीतने तक सीमित न रखकर युवाओं, फिटनेस और देश के विकास से जोड़ने की दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। श्रोताओं, भारतीय खेल इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें किसी एक उपलब्धि तक सीमित नहीं किया जा सकता। मेजर ध्यानचंद भी ऐसे ही खिलाड़ियों में शामिल है। हॉकी के मैदान पर उनके खेल ने भारत को एक अलग पहचान दी। गेंद पर उनकी पकड़, खेल को समझने की क्षमता और गोल करने की उनकी कला ने उन्हें दुनिया के महान हॉकी खिलाड़ियों में शामिल किया। आइए जानते हैं कि एक युवा खिलाड़ी से हॉकी के महान नायक बनने तक का उनका सफर कैसा रहा।
मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को तत्कालीन इलाहाबाद में हुआ था। उनके बचपन का नाम ध्यान सिंह था। उन्होंने बहुत कम उम्र में पढ़ाई छोड़ दी और 16 वर्ष की उम्र के आसपास सेना में भर्ती हो गए। ध्यान सिंह के बचपन का एक बड़ा हिस्सा झांसी में बीता। हॉकी के प्रति उनका लगाव शुरू से ही दिखाई देने लगा था। दोस्तों और भाइयों के साथ खेलते हुए वे पेड़ की डाल से हॉकी की स्टिक बना लेते थे और घंटों खेलते रहते। सेना में आने के बाद उनकी इस प्रतिभा को आगे बढ़ाने का मौका मिला। दिन में सेना की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद ध्यान सिंह अक्सर चांदनी रात में अकेले मैदान पर अभ्यास करते। इसी आदत के कारण उनके गुरु सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने उन्हें ध्यानचंद का नाम दिया। 1920 के दशक में सेना की हॉकी टीम के साथ खेलते हुए उनका नाम तेजी से सामने आने लगा। अपने बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत 1926 में न्यूजीलैंड दौरे से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर का आगाज किया। भारतीय टीम ने उस दौरे में 21 मैच खेले, इनमें 18 में जीत मिली, 2 मैच बराबरी पर रहे और केवल 1 में हार हुई। टीम ने कुल 192 गोल किए और सिर्फ 24 गोल खाए। ध्यानचंद ने इस दौरे में करीब 100 गोल किए। अब अगली बड़ी मंजिल थी ओलंपिक। 1928 में एम्स्टरडैम ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी को पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला। फाइनल में भारत ने नीदरलैंड्स को 3-0 से हराया। ध्यानचंद ने इस फाइनल में 2 गोल किए और पूरे टूर्नामेंट में 14 गोल के साथ सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। लेकिन इस जीत तक पहुंचना आसान नहीं था। उस समय भारतीय हॉकी टीम के पास विदेश जाकर खेलने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। खिलाड़ियों को ओलंपिक तक पहुंचने के लिए अलग अलग संगठनों से मदद लेनी पड़ी। टीम ने समुद्री रास्ते से एम्स्टरडैम जाते वक्त रास्ते में कई मैच खेले और इस तरह यात्रा के खर्च को पूरा करने की कोशिश की। एम्स्टरडैम की सफलता के बाद भारतीय हॉकी टीम की पहचान पूरी दुनिया में मजबूत हुई। 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में भारत ने एक बार फिर स्वर्ण पदक जीता। जापान के खिलाफ भारत ने 11-1 और अमेरिका के खिलाफ 24-1 से जीत हासिल की। अमेरिका के खिलाफ ये जीत आज भी ओलंपिक हॉकी में सबसे बड़ी जीतों में गिनी जाती है। लेकिन ध्यानचंद की सबसे बड़ी परीक्षा भी बाकी थी, 1936 में बर्लिन ओलंपिक गेम्स। इस बार ध्यानचंद भारतीय टीम के कप्तान थे। ओलंपिक से पहले भारतीय टीम जर्मनी से एक अभ्यास मैच हार गई थी। टीम के लिए ये सबसे बड़ा झटका था। ध्यानचंद ने महसूस किया कि टीम को और मजबूत तैयारी की जरूरत है। फाइनल 15 अगस्त 1936 को हुआ और सामने थी कुछ दिन पहले ही मात देने वाली जर्मन टीम। इस मैच से जुड़ी कई कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। इसमें मेजर ध्यानचंद चोटिल होने, दूसरे हाफ में बिना जूतों के खेलने और गेंद पर उनके असाधारण नियंत्रण की बातें शामिल हैं। लेकिन इन कहानियों से अलग जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वे है उनके खेल के प्रति रवैया। मैच के दौरान जर्मन गोलकीपर की टक्कर से मेजर ध्यानचंद का एक दांत टूट गया। चोट के बावजूद वे मैदान पर लौटे। इसके बाद भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाया और जर्मनी को 8-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस मुकाबले में ध्यानचंद ने 3 गोल किए। उनकी खेल भावना और नेतृत्व ने इस जीत को और खास बना दिया।
श्रोताओं, मेजर ध्यानचंद के दौर में आज जैसी खेल सुविधाएं, आधुनिक प्रशिक्षण व्यवस्था या बड़े स्तर की सरकारी सहायता नहीं थी, फिर भी एक खिलाड़ी की प्रतिभा, लगातार अभ्यास और टीम भावना ने भारतीय हॉकी को दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में शामिल कर दिया। आज करीब एक सदी बाद परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम खेलों में ऐसी व्यवस्था तैयार कर सकते हैं जिसमें किसी एक असाधारण खिलाड़ी के उभरने का इंतजार न करना पड़े, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों बच्चों और युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने का अवसर मिले। यहीं से राष्ट्रीय खेल दिवस की दूसरी तस्वीर सामने आती है।
इस वर्ष के राष्ट्रीय खेल दिवस अभियान का विषय है ट्रिब्यूट प्ले एंड मूव, यानी श्रद्धांजलि खेल और सक्रियता। इसमें एक ओर मेजर ध्यानचंद जैसे खिलाड़ियों को श्रद्धांजलि देने की बात है, तो दूसरी ओर लोगों को खेल और शारीरिक गतिविधियों से जोड़ने का संदेश। भारत में खेलों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्षों में खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य देश के अलग अलग हिस्सों में खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अवसर तथा सहायता देना है। 27 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया संवाद के जरिए देश भर के युवाओं और खिलाड़ियों से बातचीत की। इस कार्यक्रम से देश भर के 5000 से अधिक संस्थान के युवा जुड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों को केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार खेलों की ताकत और युवाओं की ऊर्जा को देश के विकास के साथ जोड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो खेलेगा वो खिलेगा।
जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को खेलों में अपनी भागीदारी का दायरा बढ़ाना होगा। जिन खेलों में देश अभी मजबूत नहीं है उनमें भी खिलाड़ियों को तैयार करने और बेहतर प्रदर्शन पर ध्यान देना होगा। ये सोच वर्ष 2036 के ओलंपिक को लेकर भारत की तैयारियों से भी जुड़ी है। लक्ष्य केवल ओलंपिक में पहुंचना नहीं बल्कि अलग अलग खेलों में बड़ी संख्या में ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करना है जो वहां अच्छा प्रदर्शन कर सकें। इस दिशा में खेलों की व्यवस्था के साथ खेल प्रशासन को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। खेलों में बदलाव केवल व्यवस्था के स्तर पर नहीं बल्कि सोच के स्तर पर भी दिखाई देता है। इसका एक उदाहरण है पैरा स्पोर्ट्स। 2024 पैरालंपिक्स की कांस्य पदक विजेता शीतल देवी ने खेलो इंडिया संवाद में बताया कि पैरा खिलाड़ियों को लेकर लोगों की सोच बदली है। जो सवाल कभी ये था कि ये खिलाड़ी क्या कर सकते हैं, आज वही खिलाड़ी देश के लिए पदक जीतने की उम्मीद का हिस्सा बन चुके हैं। खेल किसी बच्चे के लिए केवल प्रतियोगिता नहीं है, इससे अनुशासन, टीम के साथ काम करने की आदत और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। वहीं नियमित शारीरिक गतिविधियां स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी हैं, इसलिए खेलों को केवल खिलाड़ियों तक सीमित रखने की बजाय आम लोगों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया जा रहा है। फिट इंडिया आंदोलन इसी सोच का हिस्सा है। इसका उद्देश्य लोगों को रोजमर्रा के जीवन में अधिक सक्रिय रहने और फिटनेस को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
श्रोताओं, खेलों को आगे बढ़ाने के लिए केवल मैदान पर खिलाड़ी की मेहनत जरूरी नहीं है, उसके पीछे प्रशिक्षण, उपकरण, व्यवस्था, सही मार्गदर्शन और खेल के प्रति समाज की सोच भी उतनी ही जरूरी है। और यही वो जगह है जहां मेजर ध्यानचंद की विरासत आज के भारत से जुड़ती है। ध्यानचंद ने एक ऐसे समय में भारत का नाम दुनिया में रोशन किया जब संसाधन सीमित थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत से एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। आज भारत की कोशिश उस विरासत को एक बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने की है, ताकि खेल किसी एक खिलाड़ी की असाधारण कहानी न रह जाए बल्कि देश के ज्यादा से ज्यादा बच्चों और युवाओं के जीवन का हिस्सा बने। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।